हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश, बंद आंखों से ही अगर तुम्हारा घूरना पूरा हो गया हो तो नाउ स्लीप। रिदांश की बात सुनकर आरना झेमते हुए जल्दी से दूसरी तरफ करवट करके अपनी आंखें कस कर मीच लेती है। आरना अपने बेहिसाब धड़कते दिल को शांत करते हुए, ओह गॉड, आरना इस सड़ू के साथ रहकर तू भी पागल होती जा रही है, कुछ भी क्या ऊलजलूल सोच रही है, ये और तू बिल्कुल समुद्र के दो किनारों की तरह हैं, जिनका कभी कोई मेल हो ही नहीं सकता। एक पल रुककर, लेकिन इतना तो तय है कि मिस्टर अग्निहोत्री इतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद हालात ही इंसान को ऐसा कठोर बनने के लिए मजबूर कर देते हैं, वरना कोई अपनी मर्जी और खुशी से ऐसी लाइफ चूज नहीं करता। पर मैं क्यों आज उनके बारे में इतना सोच रही हूँ? शायद जो कुछ भी आज मिस्टर अग्निहोत्री ने मेरे लिए किया, अगर मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो ऐसे ही सोचती। खुद के दिल को समझाते हुए, हाँ बस यही वजह है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ भले ही रिदांश भी काफी देर से अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में भी दूर दूर तक नींद का कोई नामोनिशान नहीं था। उसके जहन में अभी भी प्रिशा की ही बातें चल रही थीं। आखिर आपकी भी तो दो बहनें हैं ना, ऐसे ही वो भी तो किसी की बेटी हैं, उनसे उनकी खुशियां मत छीनिए। बस एक बार आप उनसे रिदांश अग्निहोत्री ना बनकर, बस मेरे भाई जैसे हैं वैसे बनकर उनसे पेश आएं। रिदांश, मन में क्यों बार बार ये सारी बातें मेरे जहन में चल रही हैं, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ और इस लड़की के साथ मेरा कोई भी रवैया इसके किए कामों का ही फल है। लेकिन अगर मैं जरा भी गलत हुआ तो अपने दिल की बात को नकारते हुए, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं गलत। रिदांश और आरना दोनों ही आज अपने दिल की कश्मकश में उलझे थे और दोनों ही सच को समझते बूझते भी अपने दिल की बात और जज्बात को नकारते हुए अनजान बन रहे थे। अगले दिन सब साथ ही नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी घर में हुई सब बातों से अनजान चहकता हुआ सा आयुष वापस आता है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ अगले दिन आने वाला था। प्रिशा खुशी से आयुष के पास जाकर, भाई व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप यहाँ ऐसे अचानक? आयुष प्रिशा को गले लगकर, हाँ मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन पहले ही जाकर सबको हैरान कर दूं। और नम्या की तरफ देखकर, वैसे भी इस नकचढ़ी की सगाई है तो इसे दो दिन कैसे सुकून से रहने दे सकता था। रिदांश के पास जाकर उसके पैर छूता है। रिदांश आयुष को उठाकर अपने गले लगाता है। कैसे हो तुम? आयुष रिदांश से अलग होकर, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? ऑल गुड। आयुष रिदांश के बराबर में बैठी कल्पना जी के पास जाकर उनके पैर छूता है, लेकिन कल्पना जी अपने पास बैठी आरना का हाथ पकड़कर उसे सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। आरना मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और उन्हें आयुष के सर पर हाथ रखने का इशारा करती है, लेकिन कल्पना जी अभी भी उसे ही देख रही थी। तब आरना खुद उनका हाथ थाम कर आयुष के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिलवाती है और आयुष और चेहरे के साथ ही ये करके कल्पना जी के चेहरे पर भी बच्चों की तरह खुश हो उठती हैं। आयुष आरना से मिलकर नम्या की तरफ बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। आयुष नम्या को चिढ़ाते हुए, खुश तो बहुत होगी मोटी तुम, आखिर अब एक मासूम पर तेरी हुकूमत जो चलने वाली है। रिदांश बात काटते हुए, आयुष पहले आराम से नाश्ता कर लो। आयुष, जी भाई। इसके बाद सब लोग नाश्ता करने लगते हैं और सब अपने अपने न्यू कॉलेज और लोगों की बातें करने में लगा था, लेकिन रिदांश का पूरा ध्यान सिर्फ नम्या और उसकी आंखों के खालीपन पर था। दूसरी तरफ जो कुछ भी हुआ उसे नम्या चाहकर भी अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी और अनजाने में आयुष का उसके और करण का नाम बार बार जोड़ने पर उसके दिल को और भी ज्यादा छलनी कर रहा था। आयुष जूस का सिप लेते हुए, तो ऑल डन, सगाई की सारी तैयारियां हो गईं, जो जो रह गया वो मुझे बता दीजिए भाई, मैं सब निपटा दूंगा, वैसे भी इस मोटी को इस घर से भगाने की मुझे ही सबसे ज्यादा जल्दी है। नम्या की तरफ देखकर, अब तुम्हारा दिन है तो बताओ मोटी की क्या क्या डिमांड है तुम्हारी, क्योंकि सगाई वाले दिन मैं बिल्कुल भी तुम्हारी कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहता। और नम्या गुस्से से खड़े होते हुए, जस्ट शट अप, और सगाई नहीं हो रही है तो जस्ट स्टॉप इट। आयुष हैरान होकर, नम्या मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो और क्या कुछ भी बोले जा रही हो? नम्या की आंखें अनायास ही आंसुओं से भर जाती हैं और वो बिना रुके वहां से अपने कमरे की तरफ दौड़ जाती है। कमरे में आकर नम्या ड्रेसिंग पर रखे सामान को गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से नीचे बिखेर देती है और उसकी आंखों से गुस्से और दुख के आंसू बहने लगते हैं कि तभी उसकी नज़र अपनी सगाई के आउटफिट पर पड़ती है, जो उसने बड़े ही चाव से अपनी सगाई के लिए महीनों पहले डिजाइन करवाया था और जिसकी कीमत करोड़ में थी। नम्या उस खूबसूरत ड्रेस को देखकर उसके पास जाती है और उसे उस बैग में से निकालकर एक पल को भावुकता से देखती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव उभर आते हैं और वो उस ड्रेस को गुस्से से वहीं फर्श पर पटक देती है और वहीं ड्रॉअर में कुछ ढूंढने लगती है। और कुछ पल बाद जैसे ही उसकी नज़र ड्रॉअर में रखी माचिस पर पड़ती है तो वो उसे अपने हाथ में लेकर एक पल को देखती है और अगले ही पल उसमें से एक तीली जलाकर उस खूबसूरत ड्रेस पर डाल देती है। और तभी कमरे में रिदांश आता है और इतनी महंगी ड्रेस को जलता देखता है, लेकिन फिर भी वो नम्या से कुछ नहीं कहता। हालांकि अभी आग बहुत ही कम थी, इसीलिए रिदांश ही पास रखे पानी के जग में रखे पानी को वहां उड़ेल देता है, जिससे फौरन ही वो आग बुझ जाती है। और ये देखकर बदहवास सी नम्या वापस से तीली जलाने की कोशिश करने लगती है और कई बार कई तीली जलाने के बाद भी जब उससे तीली नहीं जलती तो वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कांपते हाथों से दो तीन तीलियां एक साथ जलाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो इन तीलियों को जला पाती, उससे पहले ही रिदांश उसका हाथ थाम लेता है। रिदांश, बेजान चीजों पर अपना गुस्सा और जज्बात जाया कर रही हो, नम्या के हाथ से माचिस लेकर साइड में फेंकते हुए, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं और मेरी बहन की आंखों में मैं कभी भी आंसू नहीं देखना चाहूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कभी कभी आंसुओं का बह जाना भी जरूरी होता है, ताकि हमारे अंदर का सारा दुख, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी हमेशा के लिए उन आंसुओं के जरिए ही बहकर बाहर जाए। रिदांश का इतना कहना भर था कि नम्या उसके सीने से लग जाती है और कल से जो उसने अपने आंसुओं का बांध रोक कर रखा था वो बह निकलता है। और जो नम्या हमेशा सख्त और स्ट्रांग बनी घूमती थी, इस वक्त वो उसमें सिर्फ एक बेबस और बिखरी हुई लड़की ही नजर आ रही थी। नम्या भावुकता से, भाई, आई ट्राई सो हार्ड, पर मैं चाह कर भी ये सब कुछ भुला नहीं पा रही हूँ। रिदांश नम्या के बालों को सहलाते हुए, इट्स ओके मेरी जान, इट्स ओके।